ओम शांति। हम सभी के बीच में हमारे राजयोगी ब्रह्मा कुमार छोटे लाल भाई जी पधारे हैं, उनका हम सभी एक हाथ की ताली से तहदिल से स्वागत करते हैं। छोटे लाल भाई जी आज हम सभी को क्लास कराएंगे, लेकिन उससे पूर्व मैं उनका परिचय दे देना चाहूंगी। छोटे लाल भाई को ज्ञान में 47 इयर्स हो गए हैं और पिछले 42 वर्ष से बाबा के घर मधुबन में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान समय मधुबन में सिक्योरिटी और रात्रि क्लास प्रोग्राम बनाने की सेवा आप करते हैं, जो रात को विशेष क्लास चलता है 9:30 से 9:30-10 बजे तक, उसको मैनेज आप करते हैं। और आपको फरीदाबाद दिल्ली के पास में हरियाणा में आता है, वहां से ये ज्ञान प्राप्त हुआ और वहीं से आप मधुबन में समर्पित हुए। आपने भारत के साथ साथ नेपाल, बांग्लादेश, मॉरिशस तथा दुबई में भी बाबा के अनेक स्थानों पर योग भट्टी कराने की सेवा की है। आपको बाबा का विशेष वरदान है, आपका मनन चिंतन बहुत ही अच्छा चलता है, जिसके फलस्वरूप आप प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे हम परिवर्तन लाएं उसके लिए क्लासेस कराते हैं। आपका लौकिक घर राजस्थान अलवर जिले में एक गांव है दरोंदा, वहां पर है। लौकिक घर में गीता पाठशाला भी चलती है। लौकिक परिवार में 3 बहनें ज्ञान में चलती हैं और 2 बहनों के घरों में गीता पाठशाला है, तथा 3 लौकिक बहनों की 5 लड़कियां, 5 कन्याएं बाबा के सेवा केंद्रों पर समर्पित हैं। कितना बड़ा योगदान है कि 5 कन्याएं बाबा के घर में समर्पित हैं। शायद मामा से ही उन्होंने प्रेरणा ली होंगी, तो इस तरह से आपका जीवन भी औरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभी मैं उनसे निवेदन करूंगी, अपने अनमोल वाणी के द्वारा आप सभी को क्लास कराएंगे। छोटे लाल भाई जी ओम शांति।
ओम शांति। स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय, यही क्लास का टॉपिक है ना। स्व स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय कैसे प्राप्त करें? परिस्थितियां तो देखो आएंगी, अनेक जन्मों का हिसाब किताब है चुक तुक करने के लिए। और हम देख रहे हैं समय जैसे जैसे अंत का आता जा रहा है समीप, वैसे वैसे दुनिया में हलचल अधिक बढ़ती जाती है और समस्याएं परिस्थितियां भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन इस संबंध में बाबा के महावाक्य हैं, बच्चे स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाएंगी, तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगी, तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। इसलिए स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलना बहुत बहुत जरूरी है। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, जहां स्व स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां कैसे बदल जाती हैं। एक जगह हम भट्ठी कराने की सेवा में गए, 2 दिन की भट्ठी थी, 3रे दिन बहन जी ने कहा एक भाई ने नया मकान बनाया है, उसकी ओपनिंग करने चलना है। ठीक है जी, चलिए। दिन के लगभग 10:30-11 बजे थे, मकान की ओपनिंग हुआ। उसके बाद बहन जी कहती अभी आपने सबका क्लास कराना है। मकान छोटा था, रोड पर टेंट लगाया हुआ था, उसमें बैठ के हम क्लास करा रहे थे। अच्छा भला मौसम था, देखते देखते काले काले बादल आने लगे, मोटी मोटी बूंद टपकना शुरू हो गया, तो सब में हलचल होने लगी। बरसात आ रही है, टेंट में बैठे क्या होगा। तो हमने क्लास बंद किया, सबको कहा कभी कोई कमजोर नेगेटिव संकल्प नहीं करेगा, अभी हम 3 मिनट कॉमेंट्री से योग करेंगे, जैसे सबको योग कराया जाए वैसे योग करना है। तो हमने योग कराना शुरू किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियाँ लेकर प्रकृति को दान दे रहा हूँ, और हे प्रकृति देवी हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप अभी अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद आना। ऐसे कर 3 मिनट कॉमेंट्री से योग कराया है, और उसके बाद जो मोटी मोटी बूंद थी वो धीरे धीरे सब शांत होती चली गई। उसके बाद पूरा 1 घंटा क्लास हुआ, फिर 1.5 घंटा ब्रह्मा भोजन हुआ, तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, फिर तो हम वहां से चले गए। तो इस तरह से जहां स्वस्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती है, हमारे अनुकूल बन जाती है। अब कैसे हम अपनी स्थिति को श्रेष्ठ योग युक्त बनाकर चलें, उसके लिए 3 अभ्यास सब अभी से ही रोजाना की दिनचर्या में करके चलें। जिनको अपनी स्थिति को योग युक्त बनाना है, योग के चार्ट को बढ़ाना है, पवित्रता में संपूर्ण बनना है, मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाना है, वो ये 3 अभ्यास रोजाना की दिनचर्या में अभी से करके चलें। या ये कहें कि इस भट्टी को भी सफल बनाना है तो अभी से शुरू कर दें रोजाना के 3 अभ्यास। पहला अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 लोगों को आत्मा के रूप से देखना है। यहीं 50 से ज्यादा लोग बैठे, अपना नियम बना लो, जब भी जो भी जिसको देखे, ये भी आत्मा वो भी आत्मा वो भी आत्मा, कम से कम 50, ज्यादा आप जितनों को भी देख सकते हो। क्या होगा इससे, हमारी आंखें जो कुछ देख रही हैं, मन तुरंत वैसा ही संकल्प करना शुरू कर देता है और वैसी हमारी स्थिति बन जाती है। तो जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति बनेगी, वैसे विचार बनेंगे, और जैसी वृत्ति वैसी स्थिति बन जाएगी। तो मूल आधार हुआ दृष्टि। यदि हम दृष्टि को आत्मिक बना ले, रूहानी बना ले, दिव्य बना ले, तो फिर संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी। दूसरा अभ्यास, आज मुझे सारे दिन में कम से कम 50 बार अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करनी है। 5, 10, 15 मिनट के बाद जब भी स्मृति आए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बिंजू बन जाओ, निराकारी बन जाओ, अशरीरी बन जाओ। क्या होगा इससे कि जैसे ही हम अशरीरी बनते हैं तो आत्मा स्वतः इस देह और देह की दुनिया के सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त होकर उस सर्वशक्तिवान बाबा की छत्र छाया के नीचे आ जाती है, और जिनके ऊपर सर्वशक्तिवान भगवान की छत्र छाया हो उसका संसार में कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा अभ्यास, स्वयं को फरिश्ता समझो और दूसरों को फरिश्ते रूप में देखकर चलो। मैं इस तन में अवतरित हुआ फरिश्ता हूं, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर लाइट, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा, फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह और देह की दुनिया से बुद्धि से कोई रिश्ता ना हो, फरिश्ता अर्थात विश्व कल्याणकारी आत्मा, फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखकर चलने वाली आत्मा। और भी बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है फरिश्ते की परिभाषा में। तो जब ऐसा हम स्वयं को फरिश्ता समझ कर चलेंगे, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और इस लाइट के शरीर में एक चमकता हुआ सितारा विराज, अभी सभी को ये 2 मिनट के लिए अनुभूति करनी, ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है, और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान, मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, इस प्रकार डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को देखो, कितना हल्का न्यारा और प्यारा लगता है। अब मैं डबल लाइट फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं सूक्ष्म बदन की ओर, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं फरिश्तों की दुनिया सूक्ष्म वतन, जहां चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश। वहीं हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। उनकी भ्रकुटी से ज्योति बिंदु शिव बाबा चमक रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। इस संसार में अवतरित हुए फरिश्ते हो, पवित्रता के अवतार, जिस प्रकार बाबा से वरदान प्राप्त कर अब मैं फरिश्ता उड़ता हुआ जा रहा हूं, और उड़ते उड़ते पहुंच गया हूं एक ऊंचे स्थान पर। वहां पर सूक्ष्म वतन से ही प्यारे बाबा से पवित्रता, सुख, शांति, शक्तियों की पावरफुल वाइब्रेशंस लेकर विश्व की सभी आत्माओं को दे रहे हैं। और अपने फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार करा रहे हैं। इस प्रकार यह सेवा करते हुए वापिस अपने साकारी वतन में पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने उस डबल लाइट फरिश्ते रूप को इमर्ज कर अनेक आत्माओं की मनसा सेवा कर सकते हैं, और जब स्वयं को फरिश्ता समझेंगे तो दूसरों को फरिश्ते रूप में देखना सहज और सरल हो जाएगा। तो वहां किसी की कमी कमजोरी दिखाई नहीं देंगी, हर एक के गुण विशेषता महानता ही नजर आएंगी, तो वो आपके अंदर भी आती चली जाएंगी, आप भी एक विशेष आत्मा, महान आत्मा बन जाएंगे। तो ये तीनों अभ्यास अगर रोजाना की दिनचर्या में हम विधि पूर्वक करके चलते हैं, उसके बाद आप अनुभव करेंगे कि आपको वहां योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग लगा रहेगा। और जब भी योग करने बैठेंगे सहज ही मन बुद्धि की एकाग्रता हो जाएगी, एक पावरफुल स्थिति का अनुभव करेंगे, लेकिन होगा करने से। तो शुरू कर दें अभी से ही। अगली पॉइंट, स्व स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अपनी संकल्प शक्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाएं, क्योंकि सबसे पहले मन में किसी भी कार्य के लिए संकल्प आता है, मुझे ये करना है, नहीं करना है, जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, कैसे करना है, संकल्प आता है ना किसी भी कार्य। अगर वो संकल्प हमारा पॉजिटिव पावरफुल है तो उसका रिजल्ट वैसा होगा, और संकल्प यदि कार्य करने से पहले ही कमजोर नेगेटिव आ गया तो उसका रिजल्ट वैसा ही होगा। तो हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने और उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चले, क्योंकि जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की मंजिल के समीप पहुंच रहे हैं, हमारे एक एक संकल्प में वो शक्ति आती जा रही है सिद्ध होने की, वैसा बनने करने की। इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है कि जो हम बनना करना चाहते हैं वही सोचें, जो नहीं चाहते वो हम ना सोचें, क्योंकि बाबा ने तो कहा ये जैसा तुम सोचोगे वैसा बनते जाओगे। तो हम हरेक अपने आप से पूछ लें कि क्या जो मैं बनना करना चाहती हूं या चाहता हूं मैं वही सोचता हूं, या कई बार जो नहीं चाहते वो भी सोच लेते हैं, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा होगा तो क्या होगा, अब सोच रहे हैं तो फिर वैसा ही होगा। इसलिए कभी भी कैसी भी समस्या परिस्थिति आए लेकिन कमजोर नेगेटिव विचारों को नहीं आने, तो कैसे हमारे संकल्पों का मन और शरीर पर कार्यों पर प्रभाव पड़ता है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। पहले मैं सुनाता हूं एक नेगेटिव विचार का अनुभव, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सके। एक भाई का फोन आया, भाई जी मैं 20 साल से ज्ञान में चल रहा हूं और मेरे सामने एक बड़ी समस्या आ गई है, मैं आपसे उसका समाधान चाहता हूं। बोलो भाई क्या समस्या है। कहने लगा कि हमारे को हमारे ही बच्चों ने घर से निकाल दिया है, बड़ी आयु में कहां जाएं क्या करें, बड़ा मुश्किल हो गया। तो हम भी सोचने लगे ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन इनके साथ हुआ। तो उससे पूछा कि भाई याद करो, आप लोगों ने कहीं कुछ गलत तो नहीं सोचा था। तो एक मिनट में सोच कर कहता है कि हाँ, हम सोचते थे कहीं बच्चे घर से नहीं निकाल दें तो कुछ पैसा जमा करके रख लो, तो जो सोचा वही हो गया उनके साथ। ये बड़ी सूक्ष्म प्रक्रिया, इसलिए ध्यान देकर चलने की बात है। तो देखो एक नेगेटिव विचार में, क्योंकि हमारी स्थिति शक्तिशाली है, इसलिए जो भी संकल्प करेंगे वो साकार होगा। तो एक नेगेटिव विचार में वो शक्ति है, पावर है, तो पॉजिटिव संकल्प में तो कितनी बड़ी शक्ति है, तो हम क्या नहीं कर सकते। अब सुनिए एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प का। एक बार हम बॉम्बे जा रहे थे भट्टी कराने की सेवा में, आबू रोड से ट्रेन में बैठे, सीट के नीचे सामान रख रहे थे, तो कुछ ऐसी नुकीली चीज थी सीट के नीचे, तो उंगली को लग गई और आधा इंच उंगली कट गई, थोड़ी गहराई से कट गई और खून निकलने लगा, दर्द भी बहुत होने लगा। और ट्रेन तो चल पड़ी, अब ट्रेन में तो कोई दवाई गोली की बात नहीं है, तो यही उंगली थी, इस उंगली के ऊपर हमने ऐसी सीट पर हम बैठ गए और इस उंगली के ऊपर ऐसे उंगली दूसरी उंगली रख ली पीछे की साइड, और इस तरह से सामने करके ये प्रयोग किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियां लेकर इस उंगली के ऊपर डाल रहा हूं, इससे इसका खून निकलना बंद हो जाए, दर्द बंद हो जाए। ऐसे दृष्टि देते 25 बार संकल्प किया और उसके बाद उंगली हटा ली, खून निकलना बंद, दर्द भी काफी कम हो गया और 15-20 मिनट के अंदर बिना किसी दवाई गोली के सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो देखो कितनी बड़ी शक्ति है हमारे एक पॉजिटिव पावरफुल संकल्प। तो ज्ञान आप सब सुनते हैं रोजाना, योग भी सब करते हैं, लेकिन जब किसी के सामने समस्या परिस्थिति आती है तो वहां कईयों के पुरुषार्थ की गाड़ी खड़ी हो जाती है, क्या करें कैसे करें, ये करें या वो करें, क्यों सब कुछ होते हुए कुछ काम नहीं आ रहा, क्योंकि उस समय ज्ञान बुद्धि से भूला हुआ है, भगवान से बुद्धि योग टूटा हुआ है, इसलिए समझ में नहीं आता क्या करें। इसलिए स्थिति अगर श्रेष्ठ है, योग युक्त है, आपने पहले से अभ्यास किया है, प्रैक्टिस की हुई है, तो किस समय आपको क्या करना है उसकी सही समय पर सही टचिंग मिलेगी, वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो इसलिए हम अपनी संकल्प शक्ति की वैल्यू को जाने पहचाने, उसको नेगेटिव होने से बचाएं, पॉजिटिव पावरफुल बना के चलें, तो फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। कुछ दिन पहले कैसे स्वस्थिति श्रेष्ठ बने, उसके एक योग में 4:30 बजे कुछ बाबा के महावक चलते हैं ना अमृत वेले, तो उसमें ये शब्द आए थे स्वस्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए। पहले भी आप लोगों ने सुना होगा, जरूरी है स्वमान का अभ्यास, और ऐसा स्वमान जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की फीलिंग आए। तो जब हम किसी भी स्वमान का स्वरूप बनकर चलते हैं, तो स्वमान से क्या होता है, हमारे विचार महान बनते हैं, और जहां विचार महान है शक्तिशाली है, तो स्थिति को शक्तिशाली बनाना सहज और सरल हो जाए। स्वमान से स्वयं को सम्मान मिलता है, बाबा से भी सम्मान मिलता है और दूसरों से भी सम्मान मिलता है। इतनी ऊंची महान है वो स्वमान की सीट। इसलिए अमृत वेले आंख खुलते ही जो हम बनना करना चाहते हैं वैसा स्वमान, मैं इस तन में अवतरित फरिश्ता हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लाइट हाउस माइट हूं, जिसकी स्मृति आते ही नशा चढ़े, शक्ति की अनुभूति हो, ऐसा स्वमान इमर्ज कर ले, उसका चिंतन करते स्वरूप बनकर योग करें। तो जब किसी भी स्वमान का हम स्वरूप बन जाते हैं, तो हमारी स्थिति से वैसे वाइब्रेशंस फैलते हैं और वैसा वातावरण वायुमंडल बनता है, लोगों को वैसी अनुभूति होती है। स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कैसे भी एक नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बनाया जा सकता है। जो कार्य आपके मुख के बोल से नहीं हो पाता है वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा कराया जा सकता है। तो सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव, मैं हर बात के पीछे के अनुभव सुना रहा हूं ताकि आपको वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाए। एक भाई का फोन आया, कहने लगा भाई जी मैंने एक जमीन के प्लाट के लिए सौदा किया था 20 लाख रुपए में, सौदा हो गया फाइनल, फलानी डेट को आना पैसे दे देना रजिस्ट्री करा देंगे। वो पैसे लेकर गया, कागज वगैरह सब तैयार हो गए तो बोल ठीक है पैसे दे दो रजिस्ट्री करा देते हैं। तो उसने 20 लाख रुपए दे दिए और पैसे लेकर व्यक्ति बदल गया, हम आपको ये प्लाट नहीं ये प्लाट देंगे। साथ साथ ही एक जैसे दो प्लाट थे बराबर के, बात हुई थी एक नंबर की, वो देना चाहता है दो नंबर, कोई मौके की जगह होगी। बोल नहीं मेरे को तो एक नंबर ही चाहिए। बोले एक नंबर नहीं मिलेगा, दो नंबर देंगे। तो बोल ठीक है आपको नहीं देना हो तो मेरे पैसे वापस कर दो, कल ले जाना। कल गया 5 दिन बाद, 5 दिन बाद गया 10 दिन बाद, 10 दिन बाद गया 15 दिन बाद, ऐसे करते करते 2 साल निकाल दिए, उसके पैसे भी नहीं दे रहा प्लाट भी नहीं दे रहा। आजकल बहुत ऐसे हो रहा है, कोई किसी से पहले से ले लेते और देते नहीं है। क्या करेंगे ऐसी आत्माओं के लिए, ये प्रैक्टिकल का अनुभव। तो हमने उन्हें बताया कि आप एक प्रयोग करिए अमृत वेले, जब वो आत्मा सोई हुई हो, अज्ञानी लोग तो ज्यादातर सोए होते हैं, तो उस समय ये प्रयोग करो 7 दिन। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशन से लेके उस आत्मा को दे रहे हैं। और ये भी संकल्प करो उस समय कि ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे और इससे उसको सद्बुद्धि मिले और वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे में इनका अमृत वेले योग करने से पहले एक बार ही स्टार्टिंग में ये संकल्प करके, फिर आप जैसे योग करते रोजाना वैसे योग करो, 7 दिन ऐसे योग करना और बताना उसका रिजल्ट क्या रहता है। उसने प्रयोग करना शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, 7 दिन का हमने बोला, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा से शक्तियों के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उस आत्मा को दे रहा हूं, 15 दिन का बोला हमने, तो उस आत्मा को दे रहा हूं, ये मेरे योग के पावरफुल वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचे, इससे उसको सद्बुद्धि मिले, वो मेरे पैसे वापस कर दे, ये मेरा योग इस बात के लिए। ऐसे वो योग करता गया 10 दिन योग करने के बाद वो व्यक्ति खुद उसके घर पे आता है चल के और 20 लाख रुपए देकर चला जाता है। तो जो कार्य मुख के बोल से नहीं हो पाया वो स्वमान के पावरफुल वाइब्रेशंस ने बाबा के योग ने करवाया। तो आप में से भी किन्नों के सामने ऐसी समस्या हो, आज भी कोई माता पूछ रही थी है, बताया हमने प्रयोग करिए ऐसे, तो आप में से विकिरणों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने आप को व्यर्थ के विचारों से कंप्लीट मुक्त बनाएं, सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बनकर चलें। क्योंकि व्यर्थ के विचारों में बहुत भाई बहनों का बहुत सारा समय वेस्ट चला जाता है और स्थिति साधारण हो जाती है। क्यों व्यर्थ के संकल्प चलते हैं, जब हम अपने आप को फ्री खाली छोड़ देते हैं, मन को कोई काम नहीं देते। मन का काम है संकल्प करना, अगर ज्ञान योग के विचार नहीं देंगे तो जो देखेंगे जो सुनेंगे उसका ही चिंतन चलना शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति बन जाएगी। तो इसलिए जिनको व्यर्थ से मुक्त होना है, पुरुषार्थ में आगे जाना, योग युक्त स्थिति बनानी है, वो सदा ही कोई न कोई स्वमान का अभ्यास, चेकिंग करना, चार्ट रखना, अटेंशन देना, मनन चिंतन अभ्यास करके चलना, इन सब बातों में स्टडी करके चलना, इन सब बातों में अपने आप को बिजी रखें, तो वहां व्यर्थ को आने की मार्जिन ही नहीं मिलेगी। आपके विचार समर्थ शक्तिशाली बनते चले जाएंगे, फिर आप जो संकल्प करेंगे वही होगा। बाबा के महावाक्य के संबंध में, बच्चे यदि तुम व्यर्थ से मुक्त होते जाओ तो वहां समर्थ संकल्पों की कमाल देखने को मिलेगी। तो जहां व्यर्थ से मुक्त होते जाते हैं तो कैसे समर्थ संकल्पों की कमाल होती है, सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक कोई भाई सुना रहे थे, एक भाई को एक कंपनी में सर्विस के इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। बाबा के बच्चे थे, वो पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो उनके मन में भी थोड़ा सा व्यर्थ के विचारों की हलचल थी। पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे थे तो पता नहीं क्या प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा, मैं पास हो पाऊंगा या नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने फोन कर किसी सीनियर भाई से पूछा, तो उनको बताया गया कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैंने जो पढ़ाया याद किया वैसे ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछा जाएगा। दूसरा, इस निश्चय के साथ इंटरव्यू देने जाना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है। तीसरा, सफेद कपड़े पहन के और बैज लगा के जाना जो दूर से ही दिखाई दे। उसने ऐसा ही किया, सफेद कपड़े पहन के बैज लगा के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, और मैंने जो पढ़ा याद किया वैसा ही प्रश्न मेरे से इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। गया तो जहां पहुंचा तो दो बुजुर्ग से लोग इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए थे। तो जैसे उनका ध्यान इस भाई की ओर गया तो सबसे पहला ध्यान बैज की तरफ गया। तो बैज को देख कर वो कहते, अच्छा ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाते हो? उसने कहा हाँ जी। बोल फिर तो आप मेडिटेशन करना भी जानते होंगे? बोले हाँ जी। तो आप कैसे मेडिटेशन करते हैं, क्या हमें भी सिखाएंगे? बोल हाँ जी। तो बस उसने थोड़ा आत्मा परमात्मा का परिचय देकर और कॉमेंट्री से योग कराना शुरू कर दिया। वो कराता गया कॉमेंट्री से योग, और उन दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 20 मिनट तक उसने कॉमेंट्री से योग कराया, योग पूरा हो गया है फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो बहुत अच्छा मेडिटेशन कराना जानते हो। दूसरा प्रश्न उससे किया कि इसके अलावा आप और क्या जानते हो? तो बोले मैं गीत गाना बहुत अच्छा जानता हूं। तो बोले गीत गाकर सुनाएंगे? बोले हाँ जी। तो उसने गीत गा दिया, प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अब वो गीत भी ऐसा है तो सुनते सुनते फिर दोनों की आंखें बंद और मगन प्रभु प्यार में। 3-4 मिनट का गीत पूरा हो गया है फिर भी उनकी आंखें ना खुले। फिर 5 मिनट के बाद उसने कहा साहब अभी मेडिटेशन पूरा हो गया, गीत पूरा हो गया है, तो उनकी आंखें खुली। अच्छा आप तो गीत गाने बहुत अच्छा जानते हो। तो बोला आप इंटरव्यू में पास हो गए हो, और ये लो अपॉइंटमेंट लेटर, और फलानी डेट से ड्यूटी ज्वाइन कर लेना। तो ये क्या हुआ? समर्थ संकल्पों की कमाल, शक्तिशाली विचारों की कमाल। इसलिए कैसी भी परिस्थिति समस्या आए, लेकिन कभी अपने मन में कमजोर नेगेटिव व्यर्थ के विचारों को नहीं लाएं, सदा ही समर्थ शक्तिशाली विचारों का स्वरूप बन के चले, तो फिर आप जो सोचेंगे वही होगा। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए कैसे परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करें, उसके लिए अपने मन की भावनाओं को हम शुभ श्रेष्ठ कल्याणकारी बनाकर चले। सबका कल्याण हो, सब आगे बढ़े, सुखी रहें, सब बाप समान बने, सबके जीवन से विघ्न और दुख की घटनाएं समाप्त हो जाएं, सबका जीवन सुख शांति बन जाए। भले कोई कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हमें अपने मन में सदा ही सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलना होगा। तो हमारे मन की शुभ भावनाओं में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो किसी भी नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना देंगी। लेकिन एक गलत व्यवहार करने वाली आत्मा के प्रति भी हमारे मन में शुभ भावना रहे, ये सबसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। ज्यादातर लोगों के देखने से, अनुभव से यही पता चलता है कि जब कोई हमारे से गलत व्यवहार करता है तो ज्यादातर लोगों की भावनाएं उस व्यवहार को देखकर बदल ही जाती हैं। तो उससे क्या होगा, कोई हिसाब किताब और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। इसलिए हमको बाबा ने ज्ञान दिया, समझ दिया, नॉलेज दिया, उस आधार से भले कोई कुछ भी करे, लेकिन हमें अपने मन में उस सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखकर चलना है, क्योंकि हम आधार मूर्त है, मास्टर रचता है। जैसी हमारी स्थिति, जैसे हमारे विचार होंगे दूसरों पर, उसका वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो कैसे हमारे मन की शुभ भावना में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो नेगेटिव विचार वाली आत्मा को बदलकर पॉजिटिव बना सकते। एक प्रैक्टिकल का अनुभव। आप में से कई ऐसी माताएं होंगी जिनके पति ज्ञान में नहीं चलते, रुकावट डालते हैं, ज्ञान में चलने से रोकते हैं, या कोई भाई भी ऐसे हो सकते हैं जिनके युगल ज्ञान में नहीं चलती, वो विरोध करती है, या कोई और संबंधी आपको ज्ञान में चलने से रोकता है। तो ऐसी आत्मा के मन के विचारों को आप कैसे शुभ भावनाओं के प्रयोग से बदल सकते हैं, उन्हें सहयोगी बना सकते हैं, प्रैक्टिकल का अनुभव। एक भाई बाबा के ज्ञान में चलते थे, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, लेकिन वो ज्ञान में चलते थे लेकिन उनकी युगल ज्ञान में नहीं चलती थी। बहुत विरोध करती थी कि मेरे बिना पूछे बिल्कुल भी सेंटर नहीं जाना है, लेकिन उनका बिजनेस बड़ा होने के कारण बार बार बाहर जाना होता था तो बाबा के सेंटर पर भी क्लास करके आ जाते थे। तो वो भाई मधुबन आए बाबा से मिलने के लिए, एक रात ऊपर ही पांडवन में रुके, क्लास के बाद हमारे से मिले और यही प्रश्न किया उन्होंने, भाई साहब मेरी युगल बहुत विघन डालती है, मेरे को ज्ञान में चलने से रोकती है, मैं क्या करूं। तो हमने उन्हें बताया कि यदि आप अपने युगल को परिवर्तन करना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, तो आज से ही दो बातों का पालन करके चलना बड़ा जरूरी है। पहली बात, चाहे आपको कितना भी विरोध करे लेकिन आपने अपने मन में उस आत्मा के प्रति एक तो कंप्लीट शुभ भावना शुभ कामना रखकर चलनी है। दूसरा, ये प्रयोग अमृत वेले ही करना है। क्यों करना है, कैसे करना है वो मैं बतला रहा हूं। अमृत वेले क्यों करना है, अमृत वेले हम सभी का अंतर्मन शांत और खाली होता है, तो जिस आत्मा को भी आप शुभ भावनाओं के वाइब्रेशन देंगे वो उस तक पहुंचते हैं, और उस आत्मा का भी अंतर्मन शांत खाली है तो उन्हें सहज ही स्वीकार कर लेगा, अंतर्मन जागृत होता है उस समय। तो जब कोई बात आपने स्वीकार कर ली तो फिर वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाएगा। प्रयोग क्या करना है, कैसे करना है, जिस आत्मा को आप बदलना चाहते हो, सहयोगी बनाना चाहते हो, उसको अपने सामने अमृत वेले योग में सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो। यदि आप जानते हैं तो सूक्ष्म में लाइट के रूप में इमर्ज कर लो, नहीं जानते हो तो आत्मा के रूप में इमर्ज कर लो, और उस समय इमर्ज कर इस ये प्रयोग करो, उस आत्मा से बातें करो, बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेकर उस आत्मा को दो कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। ऐसे बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके अमृत वेले उस आत्मा को दो। इस तरह से इनका 7 दिन आप अपने युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे बाबा से शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके देना और बताना इसका रिजल्ट क्या रहता। वो घर गया, घर जाने के बाद अमृत वेले उठकर और अपनी युगल को सूक्ष्म में लाइट के रूप में मर्ज कर उससे बाबा से ऐसी शुभ भावनाओं के पावरफुल वाइब्रेशन लेके उसको दिए कि तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, देवकुल की आत्मा हो, तुम्हारा कल्याण हो, आगे बढ़ो, सुखी रहो, उन्नति करो। ऐसे उसने अमृत वेले 2 दिन प्रयोग किया, हमने 7 दिन का बोला लेकिन उसने 2 दिन किया। 3रे दिन ड्रामा अनुसार उनके सेंटर पर योग की बट्ठी थी, तो उसने सोचा आज योग की भट्ठी है तो योग की भट्ठी में तो जाना है, तो मैंने 2 दिन तो प्रयोग किया ही शुभ भावनाओं का, तो कुछ तो उसका असर हुआ ही होगा, तो युगल से पूछ के देख लेता हूं, जैसा जवाब मिलेगा उससे पता चल जाएगा कि कुछ शुभ भावनाओं के प्रयोग का कुछ असर हुआ या नहीं। तो गया युगल के पास और कहा कि देखो आज हमारे सेंटर पर योग की भट्ठी है और यदि आप कहो तो मैं जाऊं। हाँ हाँ भले जाओ। जो रोजाना इतना विरोध करती थी वो ऐसे छुट्टी दे दी जैसे कि पहले से तैयार बैठी। कैसे आ गया इतना बड़ा परिवर्तन, उसके मन की शुभ भावनाओं ने उसकी मनोवृत्ति को बदल दिया। तो आप में से भी किनों के सामने कोई ऐसी समस्या हो तो आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। अगली पॉइंट, श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाने के लिए या परिस्थितियों पर विजयी बनने के लिए, एक तो जो हमने बताया पहले अमृत वेले आंख खुलते ही अपना कोई न कोई स्वमान इमर्ज कर लें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, और दूसरा सर्वशक्तिवान बाबा मेरे साथ है, भगवान को साथी बनाकर चलो, कहीं भी जाओ आओ कुछ भी करो 2 मिनट बाबा को याद कर कहो बाबा मैं फलानी सेवा पर जा रहा हूं आप भी मेरे साथ चलो और ये कार्य कराओ। तो आप अनुभव करेंगे जैसे कि कोई व्यक्ति किसी का साथी बनकर साथ निभाता है, ऐसे भगवान हमारा साथी बनकर साथ निभाता है। और जिनका सर्वशक्तिवान भगवान साथी बनकर साथ दे रहा हो तो वह असंभव भी संभव होता चला जाएगा, कदम कदम पर सहज सफलता की अनुभूति होती रहेगी। तो देखिए प्रयोग करके, तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव। मान लो बहन जी आपको कोई ऐसी सेवा दे दे जो आपने कभी की नहीं, तो सोचेंगे ना मैं ये सेवा कैसे करूंगा या करूंगी है? लेकिन आपने फिर भी बाबा की सेवा समझकर हां कर लिया तो बाबा आपसे वो कार्य करवा लेगा। क्यों? कराने वाला तो वो है, आप हमको तो सिर्फ निमित्त बनना है। और यदि ना कर दिया तो उसका भाग्य किसी और को मिल जाएगा। भगवान का कार्य तो किसी के बिना रुकने वाला नहीं है, इसलिए बाबा की सेवा में कभी भी ना नहीं करनी है, सदा हां जी का पाठ पक्का करके चलना है। क्योंकि ये साधारण बहने नहीं, ये पवित्रता की देवियां, भगवान के राइट हैंड, इनके द्वारा बाबा अपना कार्य करवा रहा है। क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया उनको अपनी सीट पर, तो इनके द्वारा उसकी शक्तियां सदैव उनका साथी बनकर साथ निभाती हैं। तो उसमें ही हमारा कल्याण है। कभी भी बहने जो कुछ कहें सदा हां जी का पाठ पक्का करके चले। तो ऐसा ही एक प्रैक्टिकल का अनुभव। हम नए नए मधुबन निवासी बने थे, जैसा कि बताया ना मुझे मधुबन में रहते हुए 42 साल हो गए। तो उस समय तो जब हम समर्पित हुए थे उस समय ओम शांति भवन बना ही था, उद्घाटन ही हुआ था उस साल ही हम समर्पित हुए। तो बाकी शांतिवन ज्ञान सरोवर तो कुछ नहीं था उस समय, तो सभी दादियां यहीं रहती थी, बाबा भी यहीं आते थे। तो मनोहर दादी जी ने एक प्रोग्राम बनाया, जिन भाई बहनों पर क्लास कराना भाषण करना नहीं आता है उनके अंदर वो कला आए। तो दादी ने मेरे को भी कहा कि आपको भाषण करना है। अब उसके पहले हमने किसी के आगे दो शब्द भी खड़े होकर बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब दादी ने कहा तो हम ना भी नहीं कर सके, हाँ भी नहीं कर सके, चुपचाप सुन लिया। और मैं बाबा के कमरे में गया, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा मेरे को दादी ने बोला है भाषण करना है, तो मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है, मैं कैसे भाषण करूंगा। तो बाबा की तरफ से टचिंग मिली, बच्चे बाबा ने तुमको वरदान दिया है, तुम्हें कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तो बस ये पॉइंट स्मृति में आते ही थोड़ा शक्ति आ गई। हम इनका ये बात तो ठीक है, इसका मतलब हमने कल पहले भी भाषण किया है और फिर से वही करना तो कौन सी बड़ी बात है। तो कल पहले की स्मृति आते ही थोड़ा शक्ति आ गई और बाबा को याद कर ये भी कहा बाबा यदि कुछ नहीं आए तो आप ही आना और आप ही भाषण कराना, तैयार हो गए जी। प्रोग्राम ऐसा था, टॉपिक किसी को बताई नहीं जाएंगे, ज्ञान योग के टॉपिक होंगे, चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी, उसी समय आओ और चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। अब तैयारी भी करें तो क्या करें, टॉपिक का ही मालूम नहीं है। और उसका नाम रखा गया काल्पनिक भाषण प्रतियोगिता, अर्थात आप जो हैं वो नहीं कल्पना करके बोलिए, दूसरे बन के बोलिए। जैसे कई बार बच्चों को प्रश्न दे देते हैं ना, यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे, वो कल्पना ही करके बोलेगा ना, प्रैक्टिकल में तो नहीं है वो। तो ऐसे ज्ञान योग के क्वेश्चन चिटकी बनाकर रख दी जाएंगी और उसी समय आओ, चिटकी उठाओ और जो टॉपिक निकले उस पर बोलो, ऐसा वो प्रोग्राम था। तो एक नया मनोरंजन इंटरेस्टिंग प्रोग्राम था, सब लोग देखने सुनने के लिए आए। रात के 8:30 बजे ओम शांति भवन का हाल फुल भर गया है, सब दादे दादियां आगे बैठे हैं, जिनको कुछ बोलना नहीं आता हो ऐसे लोगों को स्टेज पर बिठा दिया गया है। 7 बहनें 7 भाई सब नए नए, और उनमें से एक हम भी थे। तो प्रोग्राम शुरू, आप सोच सकते हैं कैसा वो वंडरफुल ड्रामा का सीन होगा है। तो प्रोग्राम शुरू हुआ, 3 लोगों ने हमारे से पहले बोला, 4th नंबर हमारा आया, हम भी गए, चिटकी उठाई और खोल के देखा तो बड़ा वंडरफुल टॉपिक निकला। टॉपिक निकला कि यदि आपको ब्रह्मा कुमारी बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब एक तरफ पढ़ के हंसी आए, दूसरी तरफ विचार चले भाई इस पर हम क्या बोले, तो ये तो बिल्कुल ही अपने से अलग टॉपिक है। अच्छा अब सोचने का भी टाइम नहीं, माइक के आगे खड़े हैं, बोलना ही अपने को है। तो मेरी बुद्धि में कुछ नहीं आया यार, मैंने बाबा को याद कर कहा बाबा अभी देखो मेरे को तो कुछ नहीं आता, अभी आप ही आओ और आप ही भाषण कराओ। और ऐसा नहीं हो लोग हंसी उड़ाएं, पहली बार स्टेज पाए, भाषण अच्छा होना चाहिए, ये भी बाबा को याद करके के बोल दिया। और जैसे ही ओम शांति कह के बोलना शुरू किया तो सचमुच ऐसा लगने लगा जैसे कि बाबा बुद्धि में पॉइंट टच कर रहा हो। पॉइंट स्मृति में आती गई, हम बोलते गए और हर पॉइंट के पीछे लोगों की इतनी ताली बजी, इतना अच्छा बोल गए कि उसमें 1st नंबर आया। तो आप सोच सकते हैं जिसको 2 शब्द बोलना नहीं आता हो वो ऐसा भाषण कर जाए 1st नंबर आ जाए, किसकी कमाल है, कौन कराने वाला है, बाबा। तो इसलिए कहीं भी जाओ आओ बस उसको साथी बना के चलो तो वहां असंभव भी संभव हो जाएगा। अगली पॉइंट, योग युक्त स्थिति बनाने के लिए, स्थिति को श्रेष्ठ बनाने के लिए हम अपनी बुद्धि की लाइन सदा बाबा के साथ क्लियर रख के चले। कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग हम तभी ले पाएंगे जब निरंतर बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर रहेगी। वर्तमान में भी आगे आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कि कब कहां क्या करना है, और वो तभी संभव होगा जब बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर होगी तो सही समय पर सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल हो जाएंगे। तो बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ क्लियर कब रहेगी, कैसे रहेगी, उसके लिए क्या करें, उसके लिए बातें तो बहुत हैं लेकिन मैं शॉर्ट में बतला रहा हूं। दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात, एक तो बुद्धि का स्वच्छ और पवित्र होना बहुत जरूरी है तो बुद्धि की लाइन क्लियर रहेगी। दूसरा, अब वापस घर जाने का समय आया है इसलिए सब प्रकार के विस्तार को समेट कर सार स्वरूप बन जाओ, क्योंकि वापस घर जाना है। किसी को जाने का समय हो जाए, बहुत सारा काम बाकी हो तो क्या करेगा वो, अरे ये करना था, वो लेना था, वो देना था, उसी में टाइम पूरा हो जाएगा, समय की गाड़ी छूट जाएगी, आप रह जाएंगे। इसलिए समय से पहले तैयार रहना बहुत बहुत जरूरी है। तो अब समय क्या इशारे दे रहा है, वापिस घर जाना, इसलिए सब प्रकार सब तरफ से बुद्धि को निकाल कर सार स्वरूप बन जाओ। तो हम सब पवित्र तो बने हैं लेकिन उसमें संपूर्णता आ जाए उसमें हर एक नंबर वार है। तो क्या है पवित्रता की संपूर्णता, हम उसके लिए बाबा ने मुरलियों में अव्यक्त वाणियों में सात बातें बताई है। आप अभी सुनते भी जाना और हर एक अपने आप को चेक कर लेना कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी हमारी बुद्धि की लाइन बाबा के साथ निरंतर क्लियर रहेगी, और कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में हम सफल होते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, फिर ठहरना नहीं पड़ेगा, कोई प्रश्न नहीं उठेगा। तो पहला स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का स्वच्छता। क्या स्वच्छता, खाने की, रहने की, विचारों की, स्थान की, कपड़ों की, सब प्रकार की स्वच्छता है, सफाई है, तो उससे बुद्धि की पवित्रता को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। दूसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का मन वचन। मन वचन कर्म से ब्रह्माचारी बनना, मनसा वाचा कर्मना, जो कुछ ब्रह्मा बाबा ने किया है उन सभी को बातों को पूरी तरह फॉलो करके चलने वाली आत्मा ही ब्रह्माचारी कहा जाता है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। तीसरा स्वरूप है संपूर्ण पवित्रता का एकव्रता। एकव्रता अर्थात एक बाबा दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति हमारी कहां तक बनी है, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। चौथा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का, बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प भी है पवित्रता है, इसलिए उससे भी मुक्त बनो, सदा समर्थ शक्तिशाली विचारों का ही स्वरूप बन के चले, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। पांचवा स्वरूप संपूर्ण पवित्रता का है, एक साकार मुरली में बाबा ने यह बात कही कि अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। अमृत वेले से रात्रि तक सभी नियम मर्यादाओं की पूर्ण पालना हमारे जीवन में हो, उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। छठा स्वरूप बाबा ने कहा संपूर्ण निर्विकारिता, अर्थात किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो। एक मुरली में एक बात बाबा ने कही कि मोटे मोटे पांच विकारों को तो सब बच्चों ने जीत लिया है, लेकिन उनके जो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं ना, उनको अभी तक कईयों ने अपने पास संभाल के रखा हुआ है। तो क्या है बाल बच्चे, ईर्ष्या द्वेष घृणा जेलसी नफरत सुस्ती आलस शलवेलापन परचिंतन नेगेटिव चिंतन माना जो भी नेगेटिव बातें हैं उनमें से एक भी यदि हमारे अंदर है तो वो भी अपवित्रता की लिस्ट में गिना जाएगा। इसलिए किसी भी विकार का अंश मात्र भी हमारे अंदर ना हो उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। सातवां स्वरूप, संकल्प अथवा स्वप्न में भी कोई भी अपवित्र संकल्प बुद्धि को टच ना करे उसे कहेंगे संपूर्ण पवित्र आत्मा। तो इस तरह से इन सातों बातों को हर एक अपने सामने लाकर अपने आप को चेक कर ले कि मैंने अपने आप को पवित्रता में कितना संपूर्ण बनाया है, और जितना जितना पवित्रता में संपूर्णता आती जाएगी उतना उतना बुद्धि की लाइन बाबा के साथ निरंतर क्लियर रहने लगी। और जहां लाइन क्लियर है तो कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल होते रहेंगे। तो कहीं भी रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा क्या करें कैसे करें। तो सुनिए एक प्रैक्टिकल का अनुभव। एक बार हम नेपाल जा रहे थे भट्टी कराने के लिए बाई रोड, तो इंडिया बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था, उधर नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर भी अपना सेंटर था। तो इंडिया वाले सेंटर से उधर जाना था, बीच में दोनों देशों का बॉर्डर पड़ता था। तो बॉर्डर पार करके जैसे ही हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे तो उस दिन कुछ मिलिट्री वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, तो वो नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल बंद किया हुआ था, ना किसी को जाने दे रहे थे ना आने दे रहे थे। तो हम भी गए तो हमारे को बोला कि वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब ये तो बड़ी समस्या आ गई। वहीं नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर जो अपना सेंटर है वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि वापस जाओ, हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, हम नहीं जाने देंगे। तो एक बड़ी समस्या हो गई ना। तो अभी क्या करें जी। तो वहां से थोड़ा सा अलग होकर मैंने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा और बाबा को सारी समस्या बताई। बाबा ऐसे ऐसे अभी हम नेपाल बॉर्डर पर पहुंचे हैं, यहां से 4 किलोमीटर अंदर नेपाल में अपना सेंटर है, वहां भट्टी रखी है, 250-300 लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, और ये मिलिट्री वाले कहते हैं कि हमने बॉर्डर बंद किया हुआ है, हम वापस जाओ, हम नहीं जाने देंगे। अब मुझे क्या करना है वो आप ही बताओ, मैं वही करूंगा। ऐसे मैंने बाबा को सारी समस्या याद कर बताई। बताने के बाद 2 मिनट के बाद बाबा से टचिंग मिली, बच्चे इन मिलिट्री वालों का कोई बड़ा ऑफिसर साइड को बैठा हुआ है, उससे जाके बात करो। तो मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ कोई बैठा तो है साइड को। एक और भी भाई थे हमारे साथ में वहां के, दोनों को सफेद कपड़े बैज लगा हुआ था। तो उस भाई को मैंने कहा भाई इन मिलिट्री वालों का बड़ा ऑफिसर देखो वो साइड को बैठा हुआ है, उससे चल के बात करो। गए तो उस भाई ने कहा साहब हम ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हैं और ये भाई हमारे माउंट आबू हेडक्वार्टर से आए हैं, और हमारा यहाँ नेपाल बॉर्डर के 4 किलोमीटर अंदर हमारा सेंटर है, वहां पर इन भाई के लिए बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, 250-300 लोग इनका इंतजार कर रहे हैं, तो हमको नेपाल के अंदर जाना है। अच्छा अच्छा आप ब्रह्म कुमारी आश्रम से आए हो, हाँ जी, अच्छा अच्छा कोई बात नहीं फिर तो जाइए। ये 2 मिनट के पहले ना हो गई, 2 मिनट के बाद हाँ हो गई। कैसे हाँ हो गई, बुद्धि की लाइन बाबा के साथ क्लियर थी तो सही समय पर सही टचिंग को कैच किया और वैसा करने में सफल हो गए। तो इसलिए वर्तमान में भी आने वाले समय को देखते हुए इस बात की बहुत बहुत आवश्यकता होगी कब कहां क्या करना है उसकी सही टचिंग लेकर वैसा करने में सफल हो सके। वो तभी संभव होगा जबकि हमारी बुद्धि की लाइन निरंतर बाबा के साथ क्लियर रहेगी, तो कब कहां क्या करना है वैसा करने में हम निरंतर सफल होते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो कहीं भी आपको रुकना नहीं पड़ेगा, ठहरना नहीं पड़ेगा। अगली पॉइंट, योग युक्त स्थिति या श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हम अपने सभी बोझ बाबा को अर्पित कर दें और हल्के हो जाएं। जीवन में बहुत सारी समस्याएं परिस्थितियां हर एक के सामने आती रहती हैं। कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति आई तो ज्यादातर भाई बहनों का उस समय संकल्प भी चलता है क्या होगा कैसे होगा क्या करें कैसे करें, ज्ञान योग्य तरफ रह जाता है और बहुत से फिर उसमें उलझ जाते हैं। नहीं, समस्याओं का परिस्थितियों का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। कहीं भी कोई बात समस्या परिस्थिति आई है बाबा को दिल से याद कर बता दो बाबा ये बात ऐसे ऐसे आप देख लेना, बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी। एक प्रैक्टिकल का अनुभव, लेकिन इसमें भी निश्चय चाहिए है, इसलिए बाबन का निश्चय बुद्धि विजयंती। हम बाबा की कितनी आज्ञाओं का श्रीमत का पालन करके चलते हैं उसी आधार से आपको भी समय प्रति समय बाबा की मदद मिलेगी। यदि हम उसका कहना नहीं मानते तो वो भी हमारा कहना कैसे मानेगा। जितना हम कायदों का पालन करके चलेंगे उतना उसका फायदा मिलता रहेगा। एक अनुभव, अभी लेटेस्ट की बात है, हम जयपुर के पास हिंडौन है, बड़ा शहर है, वो हम भट्टी कराने गए थे। तो वो बहन जी को पूछा भट्टी में कितने भाई बहन होंगे, दो दिन की भट्टी थी, एक दिन बड़े सेंटर पर और आधा आधा दिन उन्हीं के दूसरे जगह, दो दिन दो जगह भट्टी थी। तो बड़े सेंटर पर वाली बहन जी को पूछा मैंने कहा भट्टी में कितने भाई बहन होंगे, तो उन्होंने कहा 75 भाई बहन होंगे। तो हमने मधुबन की 75 टोली तोसा उनको दे दिया। भट्टी शुरू हुई, सुबह किया, फिर शाम को भट्टी हुई और लास्ट में भट्टी पूरा होते होते 85-90 के अंदर भाई बहन हो गए। तो बहन जी ने तो गिनती की है, तो उन्होंने क्या किया, दो और 15-20 पीस टोली के बना कर रखे, भाई वो टोली कम पड़ेगी तो ये टोली भाई जी से दिला देंगे, लेकिन मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं है। तो लास्ट में भट्टी पूरा होने के बाद बहन जी ने अनाउंसमेंट किया कि भाई सभी टोली लेने के लिए आएंगे, भाई जी टोली देंगे सबको। तो हम बाबा की याद में टोली देते जा रहे हैं, भाई बहन आते जा रहे हैं, हम टोली देते जा रहे हैं। लास्ट में मैंने देखा जब 7-8 पीस टोली के बचे हैं, तो मैंने देखा भाई बहनों की लाइन लंबी लग रही है, ज्यादा लग रहे हैं। तो मैंने उस समय बाबा को दिल से याद कर कहा बाबा अब कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, ये मधुबन की टोली कम नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे मैंने दिल से याद कर बाबा को कहा और उसके बाद मैं बाबा की याद में टोली देता जा रहा हूं, भाई बहने आते जा रहे हैं, लेकिन मैं फील कर रहा हूं कि वो टोली कम नहीं हो रही है। 7-8 पीसे थे, देखने में तो नहीं आता है, योग युक्त स्थिति में भी क्लियर तो देखने में नहीं पता चलता, लेकिन इतना जरूर चलता है कि भाई कम हुई है या ज्यादा है, वो चीज धुंधला सा नजर आता है। तो वो टोली कम नहीं हो रही है, उसी में से हमने सब भाई बहन आते गए, हम टोली देते गए, सबको खिला दी टोली और 3 पीस और बच गए। और लास्ट में बहन जी बोलती है भाई जी आपने तो कमाल कर दिया, 75 तोसे में से 85 को खिला दिया और 3 पीस और बचा लिए। तो मैंने कहा एक कमाल हमारी नहीं है, ऊपर वाले बाबा की है, वो जादूगर है तो क्या नहीं कर सकता वो है? तो कहीं भी कोई समस्या परिस्थिति है ऐसी आए, आप दिल से उसे याद कर कहो, वो तुरंत हमारी मदद के लिए हाजिर हो जाएगा। लास्ट में एक स्लोगन सुना के, अनुभव सुना के मैं पूरा करता हूं, क्योंकि हमें भी निकलना है यहां से, अभी फरीदाबाद हरियाणा जाना है तो तुरंत निकलना है। एक स्लोगन बहुत जगह आप लोगों ने लिखा हुआ देखा होगा, बच्चे तुम सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारे लिए सोचने का काम भी मैं करूंगा, देखा होगा ना, पढ़ा होगा बहुत से। और हमारा ये अनुभव है कि भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है, क्या होगा नहीं होगा, कैसे करें क्या करें, ये सोचने के बजाय हम अपनी एक जिम्मेवारी निभाएं, बस बाबा को याद, जो भी बात समस्या परिस्थिति आई है बाबा को याद कर बता दें, बस उसे याद करें और हल्के हो जाए, वहां बड़ी से बड़ी समस्या भी हल्की हो जाएगी, भगवान जी सोचने का काम भी हमारे लिए करता है। तो एक प्रैक्टिकल का अनुभव, एक जगह हम भट्टी कराने के लिए गए, 2 दिन की भट्टी थी, तीसरे दिन उन्हीं के कनेक्शन में एक एक दिन की 3 जगह भट्टी थी। तो एक ही दिन की भट्टी होने के कारण दिन में भोजन के बाद फिर से तुरंत क्लास शुरू हो जाते थे, तो 3 दिन से हमको दिन में रेस्ट नहीं मिल रहा था, काम चल रहा था लेकिन रेस्ट की थोड़ी कमी हो रही थी। तो चौथे दिन वहां की बहन जी ने चौथे सेंटर पर मॉर्निंग क्लास कराने के लिए भेज दिया। जब चौथे सेंटर पर पहुंचे तो वहां की बहन जी ने जाते ही प्रोग्राम दे दिया, भाई जी एक क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पर क्लास कराने जाना है। अब मुझे तो वही क्लास कराना थोड़ा भारी लग रहा था, क्योंकि 3 दिन से दिन में रेस्ट नहीं मिला था, और बहन जी ने और आगे का प्रोग्राम दे दिया। तो बहन जी की बात हमने सुन ली, उनको कुछ नहीं बोला, और मैं बाबा को याद कर कहने लगा बाबा अभी देखो ये शरीर रूपी गाड़ी तो रेस्ट मांग रही है, और बहन जी ने प्रोग्राम दिया है क्लास करा के नाश्ता करके 10:30-11 बजे और एक सेंटर पे क्लास कराने जाना है, तो कैसे क्या हो सकता है वो आप देख लेना, मुझे तो निमित्त बन के पार्टी बजाना है, सेवा कराने वाले तो आप हो। ऐसे मैंने बाबा को दिल से याद कर बता दिया, बस भगवान जी के लिए तो एक सेकंड की बात है। तो क्लास पूरा किया, नाश्ता किया, और उसके बाद बाबा ने बहन जी की बुद्धि को थोड़ा टच किया, और बहन जी आके कहती है अच्छा भाई जी मेरे को ऐसा विचार आया कि अभी आप थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद जाना क्लास कराने। वाह वाह वाह, इसका मतलब कि हमारे मन का एक एक संकल्प उसके पास पहुंच रहा है तभी तो उसका रिटर्न मिल रहा है ना। तो सदैव याद रहे कि भगवान मुझे देख रहा है, देख तो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, तो मेरे लिए क्या सोचता होगा वो हर एक अपने आप से पूछे। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को हम अपने पुरुषार्थ का आधार बना के चलें तो एक श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति बनाकर परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते निरंतर आगे बढ़ते उड़ते उड़ाते रहें और बाप समान बनकर अपनी श्रेष्ठ योग युक्त स्थिति द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष कर सकें। यही हमारी आप सभी महान आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना है। ओम शांति।
जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा, जब भी छाने लगे ये अंधेरा मेरे संग संग चले जो सवेरा, हर लम्हा दीप बन के जले कांटों पे भी मेरे संग संग चले, अब तो लगता है जन्नत बनी हयात। मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे बाबा है।